श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 25 श्लोक संख्या 20 1 सितंबर 2015 कमल लोचन प्रभु।
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने दो गोवर्धन धारण किया, अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली से जब उन्होंने गोवर्धन धारण किया, तुरंत धारण करने के बाद व्रजवासियों को क्या कहा उसका वर्णन इस श्लोक में आ रहा है। इसलिए इस श्लोक का पहला शब्द है अथा। अथा मतलब क्या है? पिछले श्लोक में भगवान ने जो किया उसके बाद, यानी क्या किया था भगवान ने, कृष्ण ने पिछले श्लोक में, यानी कल के श्लोक में आपने सुना कि कृत्वा गोवर्धनाचलम ददार लीलया विष्णु चका चत्रकाम इव बालकः। चत्रकाम इव बालकः, एक बालक, एक चत्रकाम, उसको मशरूम को क्या बोलते हिंदी में, कुकुर बट्टी क्या बोलते, कुछ कुछ बोलते सुना हाँ। तो ये मशरूम जैसे उठाता है, कैसे उठाता है, जैसे बच्चे होते हैं खेलने जाते हैं घर के पिछड़ा इलाके में, उधर एक सफेद सफेद का रहता है कुकुरमुत्ता होता है, उसको ऐसे उठा देता है, बहुत आसानी से, हल्का से उठा सकता है, बहुत हल्का भी रहता है, उसको तोड़ना भी आसान है, आराम से उठा लेता है। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, चत्रकाम एवं बालक कहा, एक बालक जिस प्रकार कुकुरमुत्ता को उठाता है उसी प्रकार कृष्ण ने उठाया। ददार लीलया विष्णु, वो साक्षात विष्णु है, और कैसे उठाए गोवर्धन को, लीलया। हम लीला लीला ये शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये लीला शब्द का अर्थ क्या है मालूम करना चाहिए। लीला शब्द का अर्थ है जो आसानी से किया जाता है, खेल खेल में किया जाता है, उसको लीला कहा जाता है। भगवान ने असुरों को जब मारा, खेल खेल में मार दिया, ऐसा नहीं कि उनको पसीना उठाना पड़ा, वो करना पड़ा, अरे इसको कुश्ती करना पड़ा, कुछ जरूरत नहीं पड़ा उनको। जो खेल खेल में सतः संगतो में गिर गिरी स्वयं पाणिना, स्वयं पाणिना अपने हाथ में उसे उन्होंने उठाया। तो ये प्रश्न उत्पन्न होता है, भगवान तो घर में थे, नंद महाराज नंद गोकुल में थे, नंदगांव में, नंदगांव कहाँ, गोवर्धन कहाँ, थोड़ा दूर है गोवर्धन, नंदगांव से करीबन 15-20 किलोमीटर दूर है। तो भगवान श्री कृष्ण घर में हैं, तो सारे ब्रजवासी प्रार्थना कर रहे हैं, हो कृष्ण हमको बचाओ बचाओ बचाओ, इंद्र क्रोधित होके इस प्रकार किया। तो कृष्ण ने संकल्प किया, कृष्ण की कुछ बातों को हमने पिछले कुछ लोगों से आपने सुना होगा, किस प्रकार उन्होंने अपने आप को दृढ़ संकल्प, इंद्र का काम है, इंद्र ने अपने अहंकार वश ये सब किया है, मैं जाके क्या करूंगा, अपनी ब्रजवासियों को रक्षा करूंगा, ऐसा संकल्प लेके भगवान श्री कृष्ण संकल्प लिया था, मैं गोवर्धन को उठाऊंगा अपने घर में। अभी घर में यानी वृंदगांव से कृष्ण गोवर्धन तक कैसे पहुंचे, क्या उनको बारिश नहीं हुआ, बारिश तो हर जगह हो रही थी। तब ऐसा वर्णन आता है, संहार की शक्ति, योग माया का एक संहार की शक्ति है, ये शक्ति का प्रभाव से इस शक्ति ने भगवान कृष्ण की ऐसे सेवा की कि जब भगवान नंद महाराज के घर यानी नंदगांव से जब गोवर्धन की ओर भागते भागते जा रहे थे, उस समय जितना भी बारिश हो रहा था कृष्ण का कोई शरीर गीला नहीं हुआ, कपड़ा गीला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उधर उनके ऊपर एक छाता जैसा बन गया था संहार की शक्ति। तो कृष्ण जब उधर गोवर्धन पर्वत उठाने जब पहुंचे, भले ही वो बारिश के अंदर से जा रहे थे लेकिन कुछ भी उनको असर नहीं पड़ रहा था, तो संहार की शक्ति का एक कार्य है। और जैसे कृष्ण उधर जाके उन्होंने क्या किया, गोवर्धन पर्वत को उन्होंने दाएं हाथ के छोटी उंगली पर उठाया। ये अथा शब्द का ये अर्थ है, यानी कृष्ण गोवर्धन उठाने के बाद, गोवर्धन धारण करने के बाद, तो अथा आहा, आहा मतलब क्या है, उन्हें बताया, बोला। तो किसको बोला कृष्ण ने, गोपान सारे गोपों को उन्होंने वर्णन किया, सारे गोप थे उधर, गोप वंश के यानी गोप गोपी सब लोग हैं, उन सबको कृष्ण ने बोला। तो प्रश्न आता है इधर बोलने की क्या जरूरत था, कृष्ण ने गोवर्धन उठाया सबको आ जाना चाहिए है कि नहीं। तो प्रश्न ये था कि बालक ने ऐसा गोवर्धन को धारण किया तो कुछ लोग अचंभित हो गए एकदम बिल्कुल आश्चर्यचकित, उनके मित्र लोग थे ना वो उनके सखा लोग सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, और कुछ वात्सल्य रस के थे वो जितने भी थे वो एकदम बिल्कुल डर गए, अरे ये अगर इतना पर्वत उठाया नीचे दब गया तो कृष्ण को कुछ हो जाएगा। कुछ लोग आश्चर्य में थे, कुछ लोग भयभीत थे, और कुछ लोग सोचने लगे अगर हम जाएंगे तो हम नीचे फंस जाएंगे। कोई डरेगा ना व्यक्ति, अचानक से कोई बच्चा इतना बड़ा पर्वत को उठा खड़ा बोला आओ तो भले ही बारिश में भीगे चलेगा लेकिन पर्वत के नीचे दब जाएंगे, बहुत डेंजरस है कि नहीं। इसलिए उनमें विश्वास दिलाने के लिए गोवर्धन पर्वत की महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण गाते हैं। ने कहा कि यथा आहा भगवान, सबसे पहला उन्हें माँ को संबोधित किया, हे अम्बा, क्यों माता पिता आएंगे उनके लीडर है ना नंद महाराज, तो लीडर को तो फॉलो करना पड़ेगा, जब राजा ही हमारा राजा गए तो हम भी जाएंगे, चलो विश्वास तो जागृत करना पड़ेगा। सबसे पहला उन्हें कहा हे अम्बा, हे तात, हे अम्मा मतलब मेरे माँ को यशोदा मेरे को पुकार रहे है, हे पिताजी आप दोनों और जितने भी व्रजो कसा जितने भी व्रज में है तो क्या करो आप आओ। तो ये सुनने के बाद भी सब लोग सोच रहे थे हम तो आएंगे लेकिन कैसे आटेंगे इसके अंदर कैसे, क्योंकि हमारे पास कितने गाय है, नंद महाराज के पास 9 लाख गाय, बछड़े की संख्या अलग, और नंद महाराज छोड़ो अन्य लोगों के पास इतने सारे गाय, इतने सारे बैल भैंस, इतने सारे वे सब चीजें ये गोवर्धन के नीचे कैसे आएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने एक छाता उठाया, बारिश आ रहा है, सब लोग आ छाता के अंदर में, सोचे कि एक छाता में इतने लोग कैसे आ सकते हैं, कोई बोलेगा ठीक है एक दो लोग जा सकता है। तो प्रश्न ये था कि गोवर्धन के अंदर इतने सारे लोगों को कृष्ण ने क्यों बुलाया था, क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को स्पर्श किया, स्पर्श करने मात्र से गोवर्धन को क्या हुआ उसका वर्णन हमको हरिवंश पुराण में प्राप्त होता है। हरिवंश पुराण में ऐसा वर्णन आता है, त्रैलोक्यमपि उत्सहते रक्षितुं किं पुनर्व्रजम्। तो कृष्ण इस बात को कहते हैं, संदेह को देख के व्रजवासियों के मन में संदेह था कि हम इतने सारे लोग हैं कि ये गोवर्धन के नीचे कैसे आ सकते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि कोई संदेह मत करो, क्यों कृष्ण स्वयं ने अपने मुख से कहा कि त्रैलोक्यमपि उत्सहते रक्षितुं, रक्षितुम तीनों लोकों के लोगों को रक्षा करने की शक्ति जो है गोवर्धन में है। गोवर्धन जो है सारे लोगों को तीनों लोगों को रक्षा कर सकता है। अगर ऐसा है किम पुनर्व्रजम, क्या व्रज को रक्षा नहीं कर सकता, यानी दूसरे शब्दों में इसका दो अर्थ है। एक अर्थ यह है कि गोवर्धन जो है वो इतना बड़ा है इतना विशाल है, आप जितने लोग आओगे पूरा तीनों जगत को रक्षा करने की क्षमता उसके अंदर है। संख्या की दृष्टिकोण से देखा जाए आप लोगे गोवर्धन जो है केवल 3 माइल लंबा है, तो 3 माइल लंबा छोटा जो चीज है उसके अंदर कोई इतने लोग आएंगे आप चिंता मत करो, आप आ जाओ, क्योंकि गोवर्धन सारा जगत को रक्षा कर सकता है। भाव ये है कृष्ण का कहने का, इस जगत में सारे लोग तो भक्त नहीं है, अलग अलग प्रकार के कुछ भक्त है कुछ भक्त नहीं है, कुछ ज्ञानी है कुछ योगी है कुछ कर्मी है, अनेकों अनेक प्रकार के लोग हैं, कुछ जानवर भी हैं इस जगत में। गोवर्धन वैसे लोग जो भक्त नहीं है उन लोगों को शरण दे सकता है। किम पुनर्व्रजम, क्या व्रजवासियों को नहीं देगा गोवर्धन, जैसे कृष्ण का बारे में भी भक्त लोग कहते हैं जब हम कोई प्रचार करने जाते हैं उस समय लोग बोलते हैं प्रभु जी सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में आएगा तो हमको कौन खिलाएगा। जब हम बोलते हैं किसी को इतना सारा काम करने की क्या जरूरत है, शांति से रहो भजन करो जो मिलता है अपने भाग्य से उससे जीवित करो, नहीं प्रभु इतना मेहनत नहीं करेंगे तो खाएगा क्या। एक उदाहरण हम देते हैं, प्रभुपाद जी भी दिया करते थे, कृष्ण जब वो एक हाथी को रोज 100 किलो ब्रेकफास्ट खिला सकते हैं तो हमको 2 रोटी नहीं दे सकते क्या? हाथी क्या कंप्यूटर इंजीनियरिंग करता है, कोई धंधा करता है, कोई बिजनेस करता है? कुछ नहीं करता है, लेकिन उसको अपना ब्रेकफास्ट मिल जाता है कि नहीं? तो सारा जगत को रक्षा करने वाले, सारा जगत को खिलाने वाले भगवान कृष्ण है, क्या 1 रोटी 2 रोटी हमको खिला नहीं सकते? मिल जाता है। उसी प्रकार इधर कृष्ण इसी बात को कहते हैं, त्रैलोक्यम अपि उत्सहदे रक्षितुम किम पुनर्व्रजम, क्या व्रज को रक्षा नहीं करता है? तो कोई प्रश्न पूछ सकता है इधर। कृष्ण ने कहा कि आप सब लोग आओ, आके शांति से मेरे गोवर्धन के नीचे आके आप ये करो, शरण लो। तो व्रजवासियों ने कृष्ण से पूछा कि हमारे पास इतने सारे गाय भैंस सब कुछ है, सब चीजों को कैसे लेके आएंगे? तब कृष्ण ने इस बात को कहा, अब देखा गोवर्धन का साइज क्या हो गया देखो। तो सारे व्रजवासियों ने देखा गोवर्धन जो अस्तित्व में 3 माइल लंबा छोड़ा था, अभी वो गोवर्धन कृष्ण की हाथों में उनकी अचिंत्य शक्ति की वजह से क्या हुआ, वो 32 माइल लंबा छोड़ा हो गया, 32 माइल हुआ। तो 32 माइल क्यों हुआ इसके विषय में कहा जाता है, गोवर्धन को भगवान कृष्ण का उंगली का या हाथ का स्पर्श होने मात्र से उनके अंदर इतना आनंद का अनुभव हुआ, तो ये आनंद की अनुभूति की वजह से गोवर्धन जो है वो अपने आप को विस्तार किया। तो इस बात को अलग अलग जगह आचार्यों ने भी कहा है, अलग अलग जगह ये इसका वर्णन हुआ है, गोवर्धन का विस्तार होना। गोवर्धन का विस्तार होने की वजह से गोवर्धन को कहा गया है हरिदास वर्य। वेणु गीत में गोपियां एक बहुत सुंदर श्लोक को गाती हैं जिसके अंदर हरिदास वर्य करके संबोधित किया है, हंता यमाद्रिय बला हरिदास वर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पाणि शूयस्वह कंदर कंदमूलै। हंतायम आद्री अबला हरिदास वर्यो, गोवर्धन को हरिदास वर्य कहा गया है। हरिदास वर्य मतलब क्या है, जितने भी हरि के दास है उन सारों में, सारे हरिदासों में श्रेष्ठ है। भागवत में उद्धव को, गोवर्धन को और धर्मराज यानी युधिष्ठिर महाराज, इन 3 लोगों को हरिदास वर्य करके संबोधित किया गया है, उद्धव धर्मराज या युधिष्ठिर गोवर्धन। तो गोवर्धन को हरिदास वर्य को कहा गया है क्योंकि यत रामकृष्ण चरणों स्पर्श प्रमोद, रामकृष्ण चरणों यानी रामकृष्ण मतलब इधर बलराम जी और कृष्ण का चरण का स्पर्श होने मात्र से एक तो क्या होता था, प्रमोद एकदम बिल्कुल आनंद को अनुभव करता था गोवर्धन। मानम तनोति सह गो गणयोस तयोः यत पाणीय सूयवसः कंदर कंदमूले ही, और जैसे भगवान के चरण का स्पर्श होता है तो तुरंत गोवर्धन के अंदर इतना आनंद का अनुभव होता है कि सारे भगवान कृष्ण और बलराम की लीलाओं को जो सुख को जरूरत, सुख की आवश्यकता है या उनको सुंदर जल की आवश्यकता है, जो जो चीज की जरूरत है वो सब प्रदान करने लग जाता है। ये गोवर्धन का विशेषता है, भगवान का शरीर का स्पर्श होने मात्र से ही तो प्रमोद में यानी उतने आनंद में अपने आप को इतना बड़ा विस्तार कर लिया गोवर्धन कि उस आनंद में केवल विस्तार ही नहीं, गोवर्धन क्या हुआ कि ऊपर से बहुत सारा बारिश हो रहा था, वो बारिश की वजह से मान लीजिए जोर जोर से बारिश हो रहा है आपके शरीर के ऊपर तो क्या होगा, चोट लगेगी, दुख लगेगी, लेकिन इतना आनंद को अनुभव कर रहा था गोवर्धन, इसके वजह से ये संवर्तक बादल का जो बारिश है, बारिश के बूंद नहीं गिरते थे, बारिश के खंब गिरते थे, उसका जो पानी का जो धारा थी वो बड़े बड़े खंब जैसा था, अगर ऐसा गिरे तो क्या होगा, चोट लगता है। तो गोवर्धन को ये जो बारिश के द्वारा आया हुआ जो घना खंब जैसा इतना भयानक सा बारिश है, उनको ऐसा लग रहा था तो गोवर्धन को कि फूल की मालाएं हैं, फूल की पंखुड़ियों का बारिश हो रहा है, इतना शीतलता लग रहा था, इतना सॉफ्ट लग रहा था गोवर्धन को। तो बाद में कोई प्रश्न पूछे तो गोवर्धन तो उठा दिया कृष्ण ने, उन्होंने सबको कहा कि इसको ब्रजवासियों को कहा आप आ जाओ, गाय बछड़ों के साथ में अंदर आ जाओ, गोवर्धन मैंने उठा के रखा है कि नीचे जो जगह है उसमें आ जाओ। लेकिन जो गोवर्धन पर्वत के ऊपर थे उनको क्या कहा कृष्ण ने, कृष्ण को कोई कहने की जरूरत नहीं था उनको, गोवर्धन पर्वत के ऊपर जितने भी जानवर थे, पशु थे, वो सब गोवर्धन के एकदम बिल्कुल चोटी के ऊपर पहुंच गए। यानी गोवर्धन केवल अपने आप को लंबाई में विस्तार नहीं किया, ऊंचाई में विस्तार कर लिया था। गोवर्धन का विस्तार ऊंचाई में इतना हो गया था कि जो बादल थे, बादल को छेद करके उनका जो चट्टान जो है गोवर्धन का ऊपर था, बादल के ऊपर पहुंच गए थे। तो गोवर्धन के ऊपर जितने भी जानवर थे वो सब गोवर्धन की चट्टान के ऊपर ऊपर पहुंच गई, तो बादल के ऊपर पहुंच गया, तो बादल के ऊपर आए तो बारिश तो गिरेगा नहीं उनको। तो इस प्रकार गोवर्धन धारण करने की लीला में भगवान ने इतना अद्भुत कला दिखाई। ठीक है, और एक प्रश्न पूछा जा सकता है, कृष्ण ने तो गोवर्धन उठाया तो गोवर्धन एक छाता जैसा बन गया और ऊपर से बारिश आ रहा है कि नहीं? जब ऊपर से बारिश आ रहा था तो छाता के ऊपर जब बारिश गिरता है तो बाजू में से पानी गिरना चाहिए ना, जब बाजू में इतना पानी गिर रहा गिरते नीचे भर जाना चाहिए पूरा। लेकिन क्या हुआ, व्रज में गोवर्धन उठाने के बाद एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरा। तब वो कैसे था, क्या हुआ, गोवर्धन के पर्वत के ऊपर उनका जो छोटी होता है ऊपर का चट्टान होता है आद्री, उसके ऊपर शिखर के ऊपर क्या था, भगवान का सुदर्शन चक्र वो घूम रहा था। सुदर्शन चक्र इतना प्रभाव से इतना तेजी से घूम रहा था, उससे इतना ताप उत्पन्न हो रहा था, जैसे उधर संवर्तक बादल का जो बारिश नीचे गिरता था वो चक्र का ताप के प्रभाव से वो पूरा भाप बनकर कर जाता था। इसकी वजह से इंद्र जब बाद में देखा, मैंने इतना बारिश भेजा, संवर्तक भी आश्चर्यचकित हो गया, कम से कम कुछ तो पानी होना चाहिए, पूरा एकदम बिल्कुल सूखा, कोई समस्या नहीं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला को रचाया। अभी देखिए, यद रामकृष्ण चरणों स्पर्श प्रमोदः, चरण का स्पर्श के विषय में कहा, इधर हाथ की स्पर्श से, अगर चरण का स्पर्श से इतना आनंद का अनुभव करता है गोवर्धन को, हाथ का स्पर्श होगा तो कितना आनंद का अनुभव करता होगा। तो ये गोवर्धन लीला के द्वारा एक बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त होती है, गोवर्धन के ये जो उदाहरण करने की लीला द्वारा शिक्षा ये प्राप्त होती है कि अगर हम गोवर्धन जैसा कृष्ण के स्पर्श से प्रमोदित हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, हमारे जीवन में कितना भी दुख का बारिश भी क्यों ना हो, दुख का बारिश जो है उसके द्वारा दुख नहीं लगेगा, बल्कि वही दुख जो है वो सुख का अनुभूति होगा। अगर कृष्ण के संस्पर्श पे नहीं रहेंगे, हम भौतिक जगत से आनंद लेने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, जितना भी जीवन में सुख आए वही दुख का रूप में हमको अनुभूति होता है। तो ये बहुत सुंदर शिक्षा हमको इससे प्राप्त होता है। खाली कृष्ण केवल स्पर्श मात्र किया, उंगली से थोड़ा सा स्पर्श किया, इतना आनंद को अनुभव करने लगा, उस आनंद में गोवर्धन को पता भी नहीं लगता बारिश हो रहा है कि नहीं, वो बात तो छोड़िए, इतना सारा बारिश हो रहा था, वो बारिश के जो इतने वज्र का ताप है, वज्र का जो दुख है, वो सब चीजें फूलों की पुष्प जैसा लगा, पुष्पों की माला जैसा लग रहा था। अगर कोई गोवर्धन जैसा आनंदित होता है, भगवान की संस्पर्श में आनंद को अनुभव करता है, तो कुछ भी बारिश हो, कुछ भी कितना भी कुछ भी हो, भगवान अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा रक्षा करते हैं। रक्षा करने की बात तो छोड़िए, आनंद की अनुभूति की बात तो छोड़िए, हजारों लोगों को वो शरण भी दे सकता है। भगवान स्वयं अपने मुख से इस बात को कहा, त्रैलोक्यमपि उत्सहते रक्षितुम, तीनों लोगों को रक्षा कर सकता है जो भगवान की शरीर का स्पर्श से आनंद को अनुभव करता है। तो गोवर्धन के ये विशेष जो लीला है उसके अंदर ऐसा श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर भी वर्णन करते हैं कि गोवर्धन पर्वत के नीचे ही नहीं, गोवर्धन पर्वत के ऊपर भी जितने भी जानवर थे उनको भी रक्षा प्राप्त हो गया। तो ये गोवर्धन लीला में बड़ा आश्चर्य की वर्णन या बहुत अद्भुत वर्णन अन्य गोस्वामी ग्रंथों में हुआ है। एक ग्रंथ में ऐसा वर्णन आता है कि जैसे सारे व्रजवासी गोवर्धन के नीचे पहुंचे तो सब एकदम बिल्कुल सुरक्षित हो गए, लेकिन गोपगण थे ना, यानी नंद महाराज उनके जितने भी और मित्र थे, वात्सल्य रस में थे, उन सबको ऐसा लगा अरे मेरा बच्चा जो है ऐसा उठा के रखा है उसका हाथ दर्द होता होगा, चलो हम भी सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपना डंडा लगाया, नंद महाराज ने गोपों ने ऐसा डंडा लगाया, चलो हम भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे, कितना उठा पाएगा हमारा बच्चा है ना, हाँ कितना देर उठा पाएगा। तो कृष्ण ने सोचा अच्छा ऐसा सपोर्ट देना चाहते मुझे, थोड़ा उन्होंने ऐसा उंगली को थोड़ा ऐसा टेढ़ा किया तो क्या उनका सारे डंडे टूट गए। थोड़ा सा टेढ़ा होता है तो क्या हो, थोड़ा नीचे आता है ना, तो नंद महाराज सब लोग डंडा लगाया था टूट गया, तब वो समझ गए नहीं नहीं कोई डंडा वंडा भूल जाओ ऐसे ही रहेंगे। तो ऐसा अनेकों अनेकों लीलाएं खाली गोवर्धन के नीचे हुआ, 7 दिन 7 रात तक भगवान ने उठाया गोवर्धन को, लेकिन उन सारे ब्रजवासियों को ऐसा लगा केवल एक क्षण बीता ऐसा लगा, 7 दिन 7 रात एक क्षण के रूप में बीत गया। क्यों, कृष्ण का सान्निध्य, कृष्ण का दर्शन, कृष्ण की सुंदरता का दर्शन करते करते सारे ब्रजवासियों को 7 दिन 7 रात एक क्षण के रूप में बीत गया। बीच में अनेकों अनेकों लीलाएं हो गई, जैसे नंद महाराज इत्यादि सब लोग डंडा लगा के रखे थे, इधर यशोदा मैया अन्य गोपों ने सोचा अरे कृष्ण भूखा है, हाँ इतना उठा के रखा है तो कितना ताकत की आवश्यकता होगी, चलो हम जाके उसको खिलाते, मक्खन खिलाते हैं, मक्खन ले गया कृष्ण को खिलाने खिला रहे थे, गोवर्धन उठा के रखे मक्खन खा रहे। तो ऐसे ऐसे अनेकों अनेकों प्रसंग का वर्णन है गोपियों के साथ, गोपों के साथ। कुछ गोपों ने कहने लगे, मतलब कुछ ग्वाल बाल थे ना कृष्ण के, वो कहने लगे देखा मेरा मित्र क्या किया, अगर मेरा मित्र ऐसा कर सकता मैं कितना कर सकता हूं देखो। तो गोपियों ने अपने आप में बात करने लगी कि ये कृष्ण है उठाया है, लेकिन किसकी शक्ति से उठाया मालूम है, राधारानी खड़ी है ना इसलिए उठाया, नहीं तो अगर ये नहीं होती ना क्योंकि वो उठा नहीं पाता। तो ऐसी बातें कृष्ण सुन रहे थे पीछे से, सारे जितने भी गोपियां हैं माधुर रस की गोपियां हैं पीछे पीछे थी, ये बातें सुन के जैसे एक राधारानी का नाम जैसे कृष्ण सुना थोड़ा सा उनका हाथ जो है लड़खड़ाने लगा। ऐसे ऐसे कुछ लीलाएं हैं जो गोवर्धन के नीचे हुआ उसका पूरा वर्णन हुआ, लेकिन बात यह है कि सब रसों को, 5 के 5 रसों को भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन के तलेटी में, गोवर्धन को उठा के उन्होंने अनुभव जरूर किया। तो ये श्लोक में ये अम्बा, अम्बा मतलब मेरे माँ, तथा वजौ कसाम एतोपयोषम विशत गिरिम गतम सगोदनाः, गिरिम गतम सगोदनाः, सब लोग आओ ये गिरी, ये जो गोवर्धन है उसके नीचे आप आओ, आके ये गोवर्धन का आप शरण लो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का शरण लेना मतलब क्या है कि उनकी आज्ञा को पालन करना और उस गोवर्धन उनकी जो भक्त है हरिदास वर्या उनकी शरण ग्रहण करना। अनेकों अनेकों दिनों से इस बात की चर्चा हो रही है, हमने इस मंदिर को गोवर्धन के समान तुलना किया है, प्रभुपाद जी का जो संस्था है वो भी गोवर्धन जैसा है। कुछ लोग सोचते हैं अरे आप तो संस्था है, हम इस संस्था का शरण लेंगे तो क्या होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी के विषय में कहा गया है उन्होंने ऐसी संस्था खोली है, ऐसी घर बनाया है, इसको नामक ऐसा घर बनाया है जिसमें सारा दुनिया जी सकता है, ही बिल्ट ए हाउस वेयर द होल वर्ल्ड कैन स्टे। उसी बात को इधर हरिवंश पुराण से वर्णन किया जा रहा है, कृष्ण स्वयं कहा ये गोवर्धन जो है ये केवल ब्रजवासियों को नहीं सारा संसार को सारा जगत को वो शरण दे सकता है, तो व्रज की क्यों शरण देगा, व्रज का क्यों नहीं देगा। तो ये इस्कॉन जो है वो ऐसा संस्था है, प्रभुपाद जी ने ऐसा घर बनाया इस्कॉन नामक घर, जो सारा विश्व को वो शरण दे सकता है, तो ऐसा व्यक्ति को क्यों नहीं शरण देगा जो समर्पित है, जो अच्छा भक्ति करता है। इसलिए भगवान गोवर्धन लीला के द्वारा सबको विश्वास दिला रहे हैं, अवश्य रक्षिभे कृष्ण। अवश्य रक्षिभे कृष्ण मतलब क्या है, कृष्ण निश्चित रूप में हमको रक्षा करेंगे। ये शरणागति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जब तक इस वाक्य के ऊपर विश्वास नहीं रहता है, तब तक हम पूर्ण अच्छा भक्त हम अपने आप को नहीं मान सकते, शरणागति शरणागत हूं करके मान नहीं सकते। ये वाक्य क्या है, अवश्य रक्षिभे कृष्णा। अवश्य रक्षिभे कृष्णा मतलब कृष्ण निश्चित रूप में हर परिस्थिति में मुझे रक्षा करेंगे, ही विल प्रोटेक्ट मी। जब तक इस शब्द के ऊपर विश्वास नहीं रहता है, तब तक हृदय में निर्भयता नहीं रहता है, डर रहता है। वो डर के मारे हम क्या करते हैं, कोई भौतिक वस्तु का शरण लेते हैं। इस जगत में कुछ भौतिक वस्तुओं का शरण लेना वो इस प्रकार है, डूबने वाला व्यक्ति अगर घास का तिनका को पकड़ के वो सोचता है कि मैं ठहर जाऊंगा तो उसकी मूर्खता माना जाता है। मान लो कोई डूब रहा है, कोई तालाब में कोई नदी में डूब रहा है, डूबने वाले व्यक्ति क्या करता है, उधर एक घास का तिनका था और तैर के आ रहा था, सोचा इसको पकड़ूंगा मुझे रक्षा करेगी, तो क्या होगा, वो खुद भी डूबेगा और वो घास का तिनका भी साथ में लेके जाएगा। बेचारा वो तो तैर रहा था कम से कम। उसी प्रकार इस जगत में हम अनेकों अनेकों लोगों का शरण लेते हैं, कोई माता पिता का शरण लेता है, कोई पति पति का शरण लेता है, कोई बैंक बैलेंस का शरण लेता है, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट इंश्योरेंस कराता है, कोई ये करता है, अनेकों अनेकों चीजों को करता है। यानी एक प्रकार शरण लेना है, विश्वास करना है, देखो अभी ये खत्म हो गया ना, ये बैंक बैलेंस खत्म हो गया ना, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा ना मैंने, ये फिक्स डिपॉजिट एक काम में आएगा, नहीं ये भी खत्म हो गया तो मेरा वो घर रखा है ना वो बेच के मैं अपना काम करूंगा, अगर कुछ भी नहीं रहा ना तो मेरा ये बंधु है ना ये मुझे मदद करेगा। तो शरण लेना ये जीव का स्वभाव है। अगर हम कृष्ण का शरण नहीं लेंगे, कुछ भौतिक वस्तुओं का शरण लेंगे, जब भौतिक वस्तुओं का शरण लेंगे तो क्या स्थिति है, उसकी उपमा क्या दिया गया है, डूबता हुआ व्यक्ति अगर घास का शरण लेता है, घास को पकड़ के तैरना चाहता है तो क्या होता है, वो घास के साथ खुद डूब जाएगा। उसी प्रकार जिस भौतिक वस्तु का, जिस भौतिक व्यक्ति का हम शरण लेते हैं तो खुद ही नहीं हमारे साथ साथ में उसको भी हम डुबा देते हैं। इसलिए भौतिक स्तर में ना किसी का शरण लो ना किसी का शरण दो। शरण लेने में क्या होगा, तो खुद भी डूबोगे दूसरों को भी डुबाओगे। शरण देने में क्या होगा, आप नहीं डूबोगे लेकिन डूबता हुआ व्यक्ति जिसको शरण दिया उसको आपको डुबा देगा। तो इसलिए शरण लेना है तो किसका लेना है, एक ही व्यक्ति का लेना है, कृष्ण का, कृष्ण ही का शरणम। ये भगवद्गीता का भी मूल उद्देश्य, मूल संदेश यही है, आखिरी संदेश मतलब महत्वपूर्ण संदेश यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इधर भी कृष्ण ने कहा सर्वजवासियों को, डरो मत, आओ आओ कम गोवर्धन के नीचे आके आप सब शरण लो, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आप ये मत सोचो गोवर्धन छोटा है, अब मैं उठा के रखा हूं, बीच में अगर कम से कम बारिश में तो डूब रहे, अगर अंदर जाएंगे तो पूरा गोवर्धन नीचे आ जाएगा, दब के मर जाएंगे, ये सब चीजें मन में मत रखो। मैं बोल रहा हूं इसके ऊपर विश्वास करो। इसलिए विश्वास पालन, अवश्य रखिवे कृष्णा, विश्वास पालन, ये भक्ति का या शरणागति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हर व्यक्ति प्राय इस जगत में एक ही चीज की खोज में है, वो है रक्षा की खोज में है। He wants to have protection. He wants to have shelter. रक्षा की खोज में है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आहार निद्रा भय मैत्रेम च सामान्य मैत्र पशु नराणाम, चार चीजें हैं, पशु भी करते हैं मनुष्यों को भी चाहिए। क्या चीज है, आहार निद्रा भय मैत्र, ये चारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, आहार है महत्वपूर्ण है, निद्रा महत्वपूर्ण है, या मैथुनी जीवन महत्वपूर्ण है, पारिवारिक जीवन महत्वपूर्ण है, या भय यानी रक्षा महत्वपूर्ण है, चारों में कौन सा महत्वपूर्ण है? रक्षा महत्वपूर्ण है। क्यों? मान लो कि आप आहार ग्रहण कर रहे हो, अचानक एक टेररिस्ट आ गया तो क्या करोगे आप? उसको बोलेंगे मरे मरेंगे लेकिन खा के मरेंगे, ऐसा नहीं करेगा। अगर जीवित है तो कहीं भी खा सकते हैं, लेकिन कहा आहार को छोड़ो। मान लो सो रहा है कोई व्यक्ति, सपोज समबडी स्लीपिंग, उस समय कोई आया, चोर आया, कुछ मारने के लिए कोई आया, तो क्या करोगे? हाँ, जितना मारने मारो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो आराम से सो रहा हूं। निद्रा भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। पारिवारिक जीवन बोलोगे, महत्वपूर्ण जीवन पारिवारिक जीवन, तो ये जीवन में भी मान लो कि बंदूक लेकर कोई आग लगा घर में, तो सबसे पहला क्या करेगा व्यक्ति? बाहर जाएगा, बच के बाहर जाएगा। बाद में रोएगा मेरा बेटा अंदर रहेगा, मेरा बेटा अंदर रहेगा, उसको क्यों लेके नहीं आया? तो सबसे पहला जो है, हर व्यक्ति अपने आप को बचाना चाहता है, रक्षा चाहता है, लेकिन उस रक्षा जो है वो इन भौतिक वस्तुओं से रक्षा चाहता है जो कुछ सुरक्षित नहीं है। मान लीजिए आप ऐसा एक जगह गए, ऐसा व्यक्ति का शरण लिया जो कुछ सुरक्षित नहीं है, तो आपकी जो घबराहट है बढ़ जाती है। ये जितना व्यक्ति भौतिक चीज के ऊपर ज्यादा विश्वास करता है उतना भयभीत रहता है। जिसको भौतिक व्यक्ति में जितना विश्वास नहीं है, भौतिक चीजों में प्रति या शरण नहीं लिया था, वो खुश है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? इसका एक साधारण उदाहरण बताता हूं। प्राय सब लोग सोचते हैं कि आजकल फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए हर व्यक्ति को। वो चाहता है कि मैं धन है, धन रहेगा, पैसा रहेगा तो मैं सेफ हूं। इसलिए वो बैंक में सिक्योरिटी डिपॉजिट रखता है, बैंक में लॉकर्स में रखता है पैसा, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके रखता है कि कुछ भी गड़बड़ हो गया ये पैसा मेरा काम में आएगा। लेकिन प्राय ऐसा देखा गया है, जितना व्यक्ति अमीर होता है उतना वो भयभीत होता है, उसको रात को नींद भी नहीं आता, क्योंकि उस व्यक्ति ने उस चीज का शरण लिया है जो खुद सुरक्षित नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है उसको। यानी हम वी आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग विच इज टेम्पररी, इसकी वजह से हमारी असुरक्षा बढ़ जाती है। जितना भौतिक चीजों में सुरक्षा का विश्वास करते हमारे अंदर असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है, और जितना भौतिक चीजों में इतना विश्वास नहीं करता सुरक्षा का, वो और सुखी है। इसलिए विश्वास करना है, विश्वास पालन करना है, वो केवल कृष्ण में। इसलिए विश्वास दिला रहे सारे ब्रजवासियों को इस श्लोक में उन्होंने कहा, अतः आह भगवान गोपान, उनकी बातों के द्वारा, उनकी वाणी के द्वारा। तो कोई व्यक्ति ने कृष्ण पूछा, प्रभु जी इतना विश्वास कैसे बढ़ेगा भगवान में? तो उनकी वाणी सुनने के द्वारा। ये सीक्रेट है शास्त्रों में। जितना व्यक्ति शास्त्र पढ़ता है, जितना व्यक्ति ग्रह से भगवद गीता भागवत पढ़ता है, उनको ऐसा एक विश्वास जागृत होता है हृदय में, कृष्ण मुझे रक्षा करेंगे, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, देयर इज नो अदर वे। इस विश्वास को हृदय में जागृत करना, उसको बढ़ाने में, देयर इज नो अदर वे। क्या क्या रास्ता है? एक ही है, शास्त्रों का अध्ययन। इससे जैसे भगवद गीता भागवत को बहुत तीव्रता से पढ़ता है ना व्यक्ति, कोई लड़का पढ़ने लग गया तो सब छोड़ जाकर कृष्ण के शरण में आ जाता है, क्योंकि कन्विंस हो जाता है ये जगत में कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई चीज नहीं जो मुझे शरण दे सकता है, एक ही व्यक्ति है जो शरण दे सकता है, कृष्ण। तो कृष्ण ही का शरणम, कृष्ण के शरण में जाता है। तो आहा ये शब्द के द्वारा हमें शिक्षा ले सकते हैं। कृष्ण के द्वारा बोला गया हर चीज शास्त्र है, तो इसलिए शास्त्रों को पढ़ने के द्वारा विश्वास जागृत होता है कि यथो भजसम विशता गिरिम ग्रतम गो स गोधना। वास्तविक धन हमारा गाय है, उन सबको लेके गोवर्धन के शरण में आओ। इस प्रकार कृष्ण ने सबको बताया। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं पूछा? ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जय।